Surah Isra, ayat number 46. Afa asfakum, kya bhala chun liya tumko aur rabbukum tumhare rab ne bil banin, beton ke saath, ibn ki jama banin. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَاسًا, اور بنا لی فرشتوں میں سے بیٹیاں, لڑکیاں سے مطلب ہے کہ بیٹیاں. اب یہاں پہ جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں, چونکہ وہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور یہاں سے اس آیت سے لے کے اب آگے جتنا آج ہم سبق پڑھیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ مشرکین کے جو مختلف عقائد تھے نا, جو ان کی غلطیاں تھیں عقیدے کی, ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, ان کی تصحیح کی گئی, ان کے کانسیپٹس کو کلیئر کیا گیا کہ یہ آپ جو بات کہتے ہیں, جو آپ کا عقیدہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. کہیں تو ان کے عقیدے کو مینشن کر کے پھر ان کے اعتراضات کا اور ان کی غلطیوں کا جواب دیا گیا, کہیں بغیر مینشن کیے بھی ان کو جواب دیا گیا. شرک کی ممانعت اور قرآن اور رسالت پر اعتراضات کا جواب آپ دیکھیں گے آج کے سبق میں. شرک ایک ایسا عقیدہ ہے جو جہالت میں پنپتا ہے. علم, عقل, دانش, دانائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی بھی علم سے جب بات کی جائے تو وہاں شرک نہیں رہ سکتا. اب مشرکین مکہ ایک بہت ہی بری بات کہتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ ملائکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فرشتے کا نام لیتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ بھی اللہ کی بیٹی ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے, یہ کیوں اتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا, انکم لتقولون قولا عظیما, یہ جو بات ہے نا یہ تو اتنی بڑی بات کہتے ہو, یہ اتنی بری بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے, اتنی یہ بری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو وہ انسان کی ایک محتاجی کی علامت ہے. اولاد کا انسان محتاج ہوتا ہے, اولاد اس کے لیے مددگار ہوتی ہے, یا اولاد اس کا نام آگے قائم رکھنے کے سبب بنتی ہے. یا انسان کہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد میرے لیے کھڑی ہوگی, اولاد میرے بازو بنے گی. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی محتاجی نہیں, نہ اس کے اوپر بڑھاپا ہے نہ کمزوری. جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کو اس کے مقام اور مرتبے سے اصل میں وہ گرا دیتا ہے. اور اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا ذات ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ یہ کہنا کہ اس کی بیٹیاں ہیں, یہ اس لیے اس کی زیادہ یہاں پہ بات کی گئی اسپیشلی, کیونکہ اس کا مطلب تم نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی عزت نہیں دی جتنی اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو, جس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہو اتنی بھی تم نے اللہ کی قدر نہیں جانی. تمہاری کیے تمہیں نزدیک کیا قدر ہے اللہ کی کہ خود اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے نہیں مقرر کرتے, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اتنی تمہیں بیٹیاں بری لگتی ہیں کہ تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو, لیکن وہ اللہ کے لیے تم منسوخ کرتے ہو, اس کے لیے قرار دے دیتے ہو. سوچو تو صحیح, کتنی آسانی سے تم ایک بات کہہ دیتے, لیکن یہ سوچو کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان کرنا جو اپنے لیے تو پسند نہیں, اپنے لیے کراہت رکھتے ہو اور وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہو, اس کا مطلب تم نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی ویلیو نہیں دی جتنی اپنے آپ کو دیتے ہو, جتنا اپنا خیال کرتے ہو. یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹیاں نہیں پسند, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں, کوئی بھی اولاد نہیں, نہ بیٹے نہ بیٹیاں, مگر ان کو بتایا گیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ تمہاری, یعنی ان کی جو ان کی سائیکی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھ لو اللہ کے لیے वो पसंद करते हो जो अपने लिए भी पसंद नहीं करते, अपने लिए भी नहीं चाहते। अपने यहां बेटी हो जाए तो मुंह सिया हो जाता है, गम से भर जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि उनकी क्या कैफियत होती थी, और अल्लाह ताला को वो चीज मंसूब करते हो। इससे ये सिर्फ जाहिर होता है कि तुम्हारे नजदीक क्या वैल्यू है अल्लाह की। तो क्या अल्लाह ने तुम्हें तो बेटे दे दिए और अपने लिए बेटियां बना ली? सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि इतनी बुरी बात है अल्लाह की औलाद ठहराना कि आसमान करीब है कि आसमान इससे फट जाए और जमीन शक हो जाए, इतनी बुरी बात है। तो अल्लाह ताला के लिए औलाद ठहराना, जो आज ये ईसाई भी कर रहे हैं और मुशरिकीन उस वक्त भी करते थे, और आज भी जो भी इस तरह की बात करे, ये इतनी बुरी बात है। इस चीज की नफरत हमारे अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की कोई औलाद ठहराए तो हम इसको बहुत कोई मामूली बात ना समझे। अल्लाह की औलाद ठहरा के और उसकी बर्थडे कर रहे हैं कि आज अल्लाह के हाँ नाउजु बिल्ला बेटा पैदा हुआ है, और वो खुशी कर रहे हैं तो हम भी उनको उस खुशी की मुबारकबाद देने लग जाए। ये कहाँ की अकल है, जबकि ये कितनी बुरी बात है। इस चीज को बताया गया, इन्ना कुम ला तकूलून कौलन अज़ीमा, बहुत बड़ी बात है ये। तो इससे दो बातें पता चली, एक ये कि कोई भी अगर गलत बात अल्लाह ताला से जोड़ता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है ये। नंबर टू क्या बात है कि अल्लाह ताला की जात में कोई मोहताजी बयान करना, कोई नुक्स बयान करना, जैसे कि औलाद उसके साथ जोड़ दी, उसमें कमी दिखाई ना, ये भी हराम है, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक अला है, उसको किसी मददगार की जरूरत नहीं। लिहाजा ऐसी बात करना भी हराम है। जब हम कहते हैं वो अस्समद है, वो लम यलिद वलम यूलद है, तो वो हम क्या कह रहे होते हैं? हर नमाज में ही तकरीबन हम ये सूरत पढ़ते हैं, कम से कम एक दफा तो पढ़ ही लेते हैं। बड़ी अजीम सूरत है, इसको कुरान का तहाई करार दिया गया। कितनी बड़ी बात हम इसमें डिक्लेयर करते हैं, और फिर उसके बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बेटा कह रहा है खुदा का, अगर कोई ये कह रहा है कि आज वो पैदा हुआ है, तो हमें ये कोई ऐसी हमें नागवारी नहीं लगती, बल्कि हम भी मुबारकबादें पेश करते। तो इसकी कराहत होनी चाहिए। कुरान बताता है कि ये कितनी बुरी बात है। फिर उनके चर्च में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं ये खुदा का बेटा सूली चढ़ाया गया। वलकद सर्रफना फी हादल कुरान, और अलबत्ता तहकीक फेर फेर कर लाए हैं हम इस कुरान में, यानी आयतों को बताया गया, फेर फेर कर बयान किया, तरह तरह से बयान किया। क्यों? लियतज़क्करू, ताकि वो नसीहत पकड़े। कुरान को फेर फेर के इसमें बातों को समझाया गया। तसरीफ का मतलब है फेर फेर बदल बदल के, फेर फेर के बयान करना, स्टाइल डिफरेंट तरीके अपनाए गए। जैसे कि आप देखते हैं अभी तक आपने जितने पारे पढ़े हैं, आपने देखा है कि इसमें कहीं तो वाज़ो नसीहत के साथ बात की गई, कहीं दलील दे के बात की गई, कहीं आपको जन्नत का शौक दिलाया गया, कहीं आपको जहन्नम से डराया गया, कहीं आपको मिसालें बयान की गई कि जैसे मिसाल शिर्क की ऐसे है जैसे किसी के कितने गुलाम हो और फिर वो गुलाम हर एक आका को खुश करने के लिए लगे हो, कितनी तरह से मिसालें बयान की गई हैं। कहीं तारीख के हिस्ट्री के वाकयात, समूद आद कौमे नूह इनके वाकयात बयान किए गए, हर तरह से समझाया गया। इससे पता चलता है अल्लाह ताला तो चाहता है कि लोग समझ जाएं, लेकिन लोग नहीं समझना चाहते। तो फिर ये इल्जाम ना दिया करें कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला ही हमें हिदायत नहीं देना चाहता, अगर अल्लाह चाहता तो हम हिदायत पा जाते। ये कैसे आप अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम दे सकते, जबकि उसने तो तरह तरह से इस कुरान में चीजें बयान की कि कोई रास्ता तो हो जिससे समझ जाओगे, क्योंकि किसी इंसान को शौक दिलाने से उसको बात समझ आती है, कई इंसान तो डरावे से समझता है ना। अब आप देखें, आप अपने बच्चों को किस किस तरह समझाते हैं। कभी हम आप उसको कोई इनाम दे के कहते हैं मैं तुम्हें ये लेके दूंगी, कभी कहते हैं अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी, कभी आप उसको किसी और की मिसालें देते हैं जी फलां के बच्चे को देख लो, देखो उसने कितना वो लूज किया वो। कभी आप किसी किसी बात बताते हैं, अपने बचपन की कोई बात बताते हैं, अपने बड़ों की कोई बात बताते हैं। क्यों? ये आपकी हमदर्दी होती है, आपकी खैर ख्वाही होती है अपनी औलाद के लिए कि आप कहते हैं किसी तरह ये समझ जाए। अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि इंसान समझ जाए। हम ये सोचते हैं ना, पता नहीं उसने हमें तो इसलिए पैदा किया, अब हम जहन्नुम में जाना ही है तो ठीक है। वो तो चाहता ही नहीं है कि हम संभले, वो तो चाहता ही नहीं है कि हमें हिदायत मिले। जबकि कुरान कहता है देख लो अल्लाह ने तुम्हारे लिए किस किस तरह से तरीके अपनाए तुम्हें समझाने के लिए। अब तुम खुद ही ना समझो तो कसूर किसका है? उसने पैगंबर तक भेजे, उसने किताबें भेजी, और किताब में भी एक लाइन में भी लिखा जा सकता था ये हिदायत पालो सीधे हो जा, लेकिन उसने कितनी तरह बातें बयान की, मगर इंसान समझने की तरफ नहीं आता। हर तरह से हमें समझाया गया, और आप अब तक देख चुके हैं ना किस किस तरह से, किस किस तरह से हमें झंझोड़ा गया, किस किस तरह से कभी हमें फ्यूचर की बातें, आखिरत की बातें बताई गई, कभी हमें पिछले जमाने की बातें बयान की गई, कभी हमें अभी का फायदा बताया गया। देखो इसमें तुम्हारा दुनिया का भी फायदा है, इसमें तुम्हारा आखिरत का भी फायदा, और कैसे समझाया जाए बताएं। लेकिन ना इंसान इतना ढीठ हो जाता है कि वो सुन सुन के भी समझता नहीं है, वो फिर भी रास्ते पे नहीं आता। लेकिन वो रब कितना करीम है और रब कितना रहीम है, हालांकि फायदा उसका नहीं, फायदा हमारा है। वो ऐसे जैसे वालदैन अपनी औलाद के लिए खैर ख्वाही रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, ये इसी की निशानी है कि वो इतनी तरह से बात को समझाते हैं। अल्लाह ताला भी बंदे से मोहब्बत करता है, उसे खैर ख्वाही रखता है, उसको बचाना चाहता है, तब उसको बताता है। लेकिन बंदा क्या कहता है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अमल में आ ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा मजबूर, मैं ना मानूं। वो मानने को ही तैयार नहीं। और ये सारी बातें आपको तरह तरह से समझाना, आपको बोझ में डालना नहीं है, ये 30 पारे आपको मशक्कत में डालने के लिए नहीं उतारे अल्लाह ने, ये आपके लिए कोई मुसीबत नहीं है। हाय कब खत्म होगा, हाय ये बड़ा मुश्किल, हाय ये क्यों, अल्लाह ताला ने तो इसलिए उतारे लिया तक क्या रू, ताकि वो नसीहत पकड़े तुम्हारी, नसीहत के लिए, ताकि आप संभल जाए। कितनी मोहब्बत है रब को, हालांकि उसका कुछ नहीं नुकसान अगर सारे नाफरमान हो जाए, सब भी जहन्नुम में चले जाए, और उसको कोई फायदा नहीं है यार सब जन्नत में चले जाए, फिर भी इंसान कितना नाशुकरा है, फिर भी इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत को नहीं पहचानता, उसकी खैर ख्वाही को नहीं समझता कि वो रब कैसा है खैर ख्वाह, उस रब ने मेरे लिए कितना कुछ इंतजाम कर दिया, फिर भी वो इल्जाम रब को ही देता है। मैं हिदायत पे नहीं, इसका कसूर भी अल्लाह का ही है, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं। लेकिन क्या होता है इंसानों का हाल क्या है, वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा, वो नहीं बढ़ाता, ये कुरान बार बार जो आ रहा है ये उनको नहीं बढ़ाता मगर नफरत में, इनकी नफरत ही बढ़ती है। इन बजाय इसके कि ये कुरान पढ़ के इस तरफ को आए, इनके दिल डर जाए, ये संभल जाए, इनके रोंगटे खड़े जाए, क्योंकि कुरान में है कि जो इन लोगों के बारे में कि जो जब कुरान सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं अल्लाह के खौफ से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बात समझ नहीं आती। वो सुन के और भिदकते हैं और दूर भागते हैं, उनकी दूरी बढ़ जाती है। क्या फर्क है, एक ऐसे हैं जो संभल जाएं और एक ऐसे हैं, क्या फर्क है? फर्क अपने अंदर है। अपना अंदर ही जब गंदा हो ना, तो फिर ये कुरान जैसा है कलाम भी असर नहीं करता। ऐसे ही जैसे आप देसी घी का पराठा किसी बीमार को खिला दो तो और ही बीमार हो जाएगा, उसके अंदर बीमारी है ना, उसको ये सेहत अफजा चीज भी फायदा नहीं देगी। आप तंदुरुस्त को खिलाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, आप बीमार को दे देंगे और बीमार हो जाए। इसी तरह ये कुरान है, ये शिफा है, ये रहमत है, ये बरकत है, लेकिन उनके लिए जिनका अपना अंदर ठीक है, ये उनको कुव्वत बख्शता है। और जिसकी अपनी फितरत ही बिगड़ी हुई है, तो फिर अल्लाह ताला ने तो फरमाया वाला कद यस्सर नल कुरान लिदिक्री फहल में मुद्दकर, हमने तो आसान कर दिया इस कुरान को नसीहत के लिए, कोई है नसीहत पकड़ने वाला? तो वो उल्टा तो असर पड़ता, और ही दूर भागते, उनकी नफरत और बढ़ती है। उनको समझाया जाता है वो सुनना ही नहीं चाहते, यानी नेगेटिव असर लेना। तो कसूर कुरान का नहीं, कसूर उनका है। अब बारिश बरसती है, वो जमीन जो दरखेज होती है उससे सब्जा उगता है, वो जमीन जो बंजर होती है, शोर ज़दा होती है, उसके अंदर क्या होता है? कीचड़ होता है। बंजर जमीन पे पानी बह जाता, कुछ भी नहीं उगता। तो फर्क तो जमीन का हुआ ना। قل لو كان معه آلهة كما يقولون, कह दीजिए ए नबी, आप कह दें अगर अल्लाह के साथ और भी इलाह होते जैसे ये दावा करते हैं कि अल्लाह के और भी कोई उसके बेटा है, कोई बेटियां बताते हैं या और शरीक बताते हैं, अगर जैसे ये कहते हैं उस तरह अल्लाह ताला की साथ वाकई इलाह होते अगर, तो इधल लबतगो इला दिल अर्शी सबीला, तो तब क्या होता? वो तो तलाश करते अर्श वाले के लिए रास्ता। इस आयत में डिफरेंट माने मुफसरीन ने बयान किए, सभी ठीक हो सकते। एक माना ये कि अगर और भी इला होते, और भी लोगों के पास इख्तियार होता, अथॉरिटी होती, पावर होती, कुव्वत होती, इसलिए कि इला तो वही होता है ना जो बा इख्तियार हो, बे इख्तियार तो इला हो ही नहीं सकता, उस पर तो अथॉरिटी नहीं, वो थोड़ी इला होता है। यानी अगर तुम तो मानते हो कि कोई और इला है, तो मसलन तुम्हारी बात मान ली जाए कि भाई और इला है, तो ये देखो दुनिया से ही आप देख ले, जितने भी हुक्मरान आए, ये उन्होंने अपनी हुकूमतों को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे मुल्कों पे चढ़ाइयां की, उनके साथ लड़े। दुनिया में जितनी जंगें हुई वो किस लिए हुई? पावर को अपनी बढ़ाने के लिए ना। एक सिकंदर निकला, वो कहाँ से कहाँ फतुहात करता करता कहाँ तक पहुंचा, आराम से तो नहीं बैठते वो, आगे आगे लड़ते जाते हैं, आगे आगे पहुंचते जाते हैं, इख्तदार की जंग होती है। तो अगर और भी होते आलेहा इला माबूद, तो वो तो जंगें करते और अपनी और हुकूमत बढ़ाने की कोशिश करते, आराम से तो नहीं बैठते, उसके पास तो पावर होती। एक पावर वाला दूसरी पावर वाले को घिरा के और अपनी पावर बढ़ाना चाहता, वो क्यों दूसरे के साथ साथ चलता? लेकिन आप देखें इस कायनात में जितनी हार्मनी है, जमीन पे जंग होती है इंसानों के दरमियान, लेकिन आप आसमान की तरफ निगाह उठा के देखिए, आप इस कायनात में गौर करके देखिए, कहीं कोई पावर की जंग नजर आ रही है आपको? कहीं कोई खून खराबा, कहीं कोई तीरों की बारिश, कहीं कोई लड़ना झगड़ना? कितनी हारमनी है, कितना सुकून है कायनात में। इंसान ने उधम मचाए हुए हैं, लेकिन कायनात में कितना सुकून है? क्या ये नहीं समझाता तुम्हें कि इला एक ही है? लेकिन आप कितनी तौहीद की आप इसमें दलाइल देखेंगे। हर किस्म के शिर्क को काट दिया गया, ये मक्की सूरत है ना, देखो तुम अगर किसी में भी पावर समझते हो, तुम समझते हो इसके पास भी पावर है, इसके पास भी कोई इख्तियार आते, क्यों नहीं वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करके अर्श वाले को गिरा के और वहां पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहता? क्यों नहीं वो तलाश करता अर्श वाले की तरफ सबीला? अच्छा, फिर दूसरा मफहूम ये है कि जिनको ये इलाह कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, हम इनकी बंदगी इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, तो अगर ऐसा ही होता तो कितने अरसे से तुम्हारे आबाओ अजदाद से ये शिर्क चल रहा है? तो कुर्ब का कोई तो अभी तक रास्ता पता चल जाना था, अभी तक कोई रास्ता ही नहीं मिला कुर्ब का। अल्लाह अकबर। तीसरा एक और मफहूम है कि अगर कोई और इलाह होता तो वो भी तो मखलूक ही होता, इसलिए कि हर कोई मानता है, मुशरिक भी मानता है कि इस कायनात का खालिक एक ही है। सब कहते हैं, जितने आप मुशरिक इनसे भी बात कर ले, वो कहते हैं छोटे छोटे ये सारे हैं लेकिन ऊपर वाला तो एक ही है, वो भी कहते हैं ऊपर वाला कहते हैं ना। तो जो बाकी सारी हैं वो तो फिर मखलूक है, राइट? एक खालिक है, एक ऊपर वाला है, मान ली तुम्हारी बात, एक ऊपर वाला है, तो फिर खालिक तो अकेला ही है। अगर और भी इबादत के लायक है तो वो तो सब मखलूक है, और मखलूक का काम क्या है? कि वो खालिक की बंदगी करे, ये खालिक का हक है। हदीस में आता है ना, बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने हजरत मुआज बिन जबल से पूछा था कि अल्लाह ताला का हक क्या है, उन्होंने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया अल्लाह का हक ये है अपनी मखलूक के ऊपर कि मखलूक सिर्फ अल्लाह की बंदगी करे। फिर पूछा ये जानते हो मखलूक का, बंदों का हक अल्लाह पे क्या है? तो बंदों का हक अल्लाह पे ये है कि जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं दे, ये बंदों का हक है। फिर लेकिन अल्लाह का हक क्या है हमारे ऊपर कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें? ये उसका हक है, हम उसको उसका हक दें। जब हम उसको उसका हक नहीं देते तो ये जुल्म होता है, फिर ये है वो जो जुल्म आजीम है, शिर्क, सबसे बड़ा गुना। और आप देखें ये तो शिर्क है ना, ये सबसे बड़ा गुना है, इसका मतलब तौहीद जो है सबसे बड़ा नेकी का काम है। इसे उलट कर लेना, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा इसलिए वही कलिमात हैं जिसमें उसकी तौहीद बयान होती है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलिमा है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अफजलु जिक्र है, ये जिक्र में भी सबसे जबरदस्त अफजल जिक्र। तो तौहीद का बयान करना बहुत बड़ा अमल है, इसी की बेस के ऊपर नेकियां कबूल होंगी कयामत के दिन, इसी पे कोई मौत पाता है, वफात पाता है तो उसके लिए जन्नत है। यही वो कलमा है जिसकी बेस पे कयामत के दिन किसी इंसान की नेकियां और बदियां तुलेंगी। अगर ये कलमा नहीं है तो नेकियां और बदियां तुलने का तो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, इसलिए क्योंकि फिर तो सीधी जहन्नुम है। यही वो कलमा है कि सुबहान अल्लाह, आसमान जमीन इनको सबको एक जंजीरों में जकड़ दिया जाए और उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह को मारा जाए तो सब रेजा रेजा हो जाए। यही वो कलमा के सातों आसमान जमीन एक तराजू पे रख दी जाए, दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह उनसे ज्यादा वजनी है, ये छोटी बात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है ना बहुत बड़ी बात है जो इंसान डिक्लेयर करता है, लेकिन ये समझ के बोलने की बात है, ये इसके ऊपर ईमान रखने की बात है कि कोई इलाह है ही नहीं सिवाय अल्लाह के, ये डिक्लेयर करना नहीं है कोई इलाह, नहीं सबकी नफी पहले करना। इंसान नफी नहीं करता, इंसान कहता है हाँ अल्लाह इलाह है और लेकिन उसके साथ और भी इलाह है, यही तो शिर्क है। और इसी कलमे को अहसनुल हसनात कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये सबसे अच्छी और बेहतरीन नेकी है, सबसे वजनी अमल मीजान में ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। हशर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का सबब, अहम सबब यही कलमा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वो कलमा है जो अल्लाह ताला के हजूर खुद पहुंच जाता है, कोई चीज इसको रोक नहीं सकती है। जो बंदा इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं इस कलमे के लिए, यहां तक कि ये कलमा अर्शे इलाही तक पहुंच जाता है, बशर्ते के कहने वाला गुनाह कबीरा से बचता रहा। तिर्मिजी में ये रिवायत है। तो अब आपको पता है ना, पाकीजा कलमात अल्लाह ताला की तरफ चढ़ते हैं, तो ये वो पाकीजा कलमा और ये वो मुबारक कलमा जिसके कहने वाले के लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया ना, वजू करे और उसके बाद जिसने वजू अच्छी तरह किया उसके बाद ये कलमा पढ़ा, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो जाए। ये वो कलमा है, इतना अजीम है, ये समझ ले जन्नत की चाबी है। तो ये जो सच्चाई के साथ बोलता है, जो इसकी गवाही देगा, तो बुखारी में रिवायत है कि अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग पर हराम कर देगा, तो जहन्नम से महफूज हो जाएगा। तो इसलिए ये मामूली बात नहीं है, याद रखिए, ये ऐसी बात है, ये ऐसा कलमा है कि जो सबकी नफी कर देता है कि कोई और माबूद है ही नहीं। और ये कलमे पे जब हम ईमान रखते हैं ना, उसके बाद समझ जाएं कि हमने सबकी नफी कर दी भी, उसके बाद क्या पॉइंट रह जाता है कि हम कहीं जाके औलाद मांगे, कहीं जाके शिफा मांगे, कहीं जाके रिस्क मांगे, कहीं किसी के दर पे जाके सजदे करें, किसी के आगे हाथ उठाएं, क्योंकि ये सब मुरासमे इबादत हैं। याद रखिए, अभी आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, दुआ करना, नमाज पढ़ना, ये सब रोजा रखना, कुर्बानी करना, सदका करना, नजरो नियाज करना, ये सब इबादत की मरासे में, इबादत के रिचुअल्स हैं, इबादत का पार्ट है, समझ लें आप, समझ आप पार्ट्स ऑफ इबादत हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इबादत समझ लें। अब ये जब आप इबादत इबादत तो कहते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ये कहते रहते हैं, इसकी रट लगाई हुई है, उसकी तस्बीह कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके कहीं और खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं ये गौसे आजम है, ये मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा, ये फिर कैसे हो गया? नजर नियाज किसी और के नाम की दे रहे हैं, कुर्बानी किसी और के नाम की कर रहे हैं, नमाज भी कोई गौसे आजम के नाम की पढ़ रहा है, किसी ने किबला अपना अजमेर बनाया हुआ, ये क्या बातें हैं? फिर तो सबकी जड़ कट जाती है जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह समझ के कहते हैं। इसका मतलब पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, शऊर ही नहीं। हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे मुल्कों में देख ले आप, किस तरह शिर्क कर रही है और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती जा रही, समझ ही नहीं, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अगर तुम जिस तरह कहते हो इनके पास भी इख्तियारात हैं, तो तुम तो मानते हो ना, खुद मानते हो कि खालिक एक है, तो अगर एक खालिक है तो उसका मतलब खालिक कोई और है नहीं, बाकी सारी मखलूक है, मखलूक का तो काम है कि वो खालिक की बंदगी करे, तो जिनको तुम मान रहे हो इसका मतलब वो तो मखलूक है, क्या ये सारे खालिक है? नहीं, तुम खुद कहते हो एक खालिक। लॉजिकल बातें हैं ये सारी, फिर भी क्यों नहीं समझ आते? ये अपील करती हैं जहन को, ये इतनी इनके अंदर ये सेंस मेक करती हैं, फिर क्यों हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं, क्यों हम फिर वही शिर्क के धंधों में पड़ जाते, सिर्फ इसलिए कि उसने कह दिया, उसने कह दिया। यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ पे ये होता, ये कहानियां किसने बना दी, इनको किसने बता दिया? खालिक तक देखें, खालिक तक पहुंचने का उसकी उसने दुआएं कबूल करनी है ना, जिस रब ने खुद बता दिया ये सब कुछ हमें जो कुरान में है, तो फिर उसके बाद फिर इनकी बातों पे आप यकीन करते हो कुरान की बात छोड़ के, क्योंकि इसने कह दिया कि यहां से सब कुछ मिलता है, कुरान की बात आपने पीछे कर दी, कुरान की नाउजुबिल्ला बात को आपने झटक दिया कि ये बात गलत है क्या, और उनकी बात सच्ची है। सुबहानहू, वो तो पाक है इससे, सुबहान का मैंने आपको कई दफा बता चुकी हूं, अब आप सबको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, सुबहान, क्योंकि हम सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इसकी तस्बीह करते हैं। सुबहान कितनी बड़ी बात है जो आप कहते हैं मुंह से, सुभान का मतलब है वो हर ऐब से, हर नक से, हर कमजोरी से जो किसी के दिमाग में जर्रे बराबर भी कोई कमजोरी की चीज आ सकती है ना, वो तस्वुर भी कमजोरी का, ऐब का, नक्स का आ सकता है, वो उन सब से पाक है और हर तरह के कमालात उसके अंदर है। तो सुभान अल्लाह का मतलब है वो ऐबों से, नकाय से पाक है, और जो कमालात है ना, कमाल अच्छाइयां, अच्छी सिफात है, वो उसके अंदर कमाल दर्जे को, इसका मतलब है कि फिर उसको तो ये तो नक्स हुआ, अगर उसको नायब की जरूरत है, किसी मुशीर की जरूरत है, कोई मशवरा उसको दे, उसने किसी से पूछना है, वो तो मशवरा हम लेते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है देखो किसी से मशवरा कर लो, क्योंकि हो सकता है पता नहीं मेरी बात सही है, किसी से हो सकता है कोई और इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हमारे जैसे लोग करते हैं जो जिनके अंदर कमजोरियां हैं, जिनके अंदर कोई अकल की कमी है, जिनके अंदर इल्म की कमी है, वो अलीम है। जब आप देखो, मुझे अफसोस दुख इस बात का होता है कि इंसानों ने अल्लाह ताला की जो तौहीद है ना, तौहीद अस्माओ सिफात को भी नहीं समझा। अगर वो ही समझ लेते ना, तौहीद उलूहियत है, तौहीद रबूबियत है, तौहीद अस्माओ सिफात है, अस्माओ सिफात को अगर आप समझ लें अल्लाह की, तो आपका जहन खुल जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप अस्माए हुस्ना को समझें। हमारी कैपेसिटी दिमाग की इतनी नहीं है कि हम इनकी डेप्थ तक पहुंच सके, लेकिन जितनी भी हमारी है, छोटी छोटी अकल के मुताबिक, छोटी समझ के मुताबिक, जितनी तक भी हम सतही तौर पे भी समझ जाए ना, तब भी इंसान इन ओ होता है अल्लाह ताला की सिफात से के वो रब ऐसा है, आप हैरान और परेशान रह जाते कि वो रब ये है। अब जब आप अस्माउ सिफात को समझ जाते हैं ना, तो ये सारे शिर्क खत्म हो जाते हैं। अस्माउ सिफात को ना सिर्फ समझना बल्कि इनके ऊपर ईमान रखना कि अल्लाह ऐसा है, ये है उसके अस्माउ सिफात, फिर सारी चीजें हकीर लगने लगती हैं, फिर सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं, फिर सारी चीजें इतनी बेमानी लगने लगती हैं। तो इसलिए जो अल्लाह ताला को समझ जाता है, उसकी अजमत को पहचान जाता है ना, फिर वो ये जान जाता है कि ये क्या जिनके पास मैं जाके कुछ मांगू, या जिनको मैं कुछ समझू, या जिनके से मैं कोई उम्मीदें रखू, या जिन पे मैं भरोसा करूं, मेरा भरोसा तो उस रब्बुल आलमीन पे। तो सुभान सुभानहू, अब जब इंसान ये कहता है और अल्लाह ताला ने फरमा दिया अपनी जात के लिए खुद कि सुभान सिर्फ वो ही है, उसके अलावा कोई सुभान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो नक्स से पाक हो, यूब से पाक हो, हर किस्म की कमजोरी से हो, कैसे हो सकता। और हर बादशाह को वजीर चाहिए होता है, हर बादशाह को मुशीर चाहिए होता है, हर बादशाह वोट का मोहताज है, अपनी राया की सपोर्ट का मोहताज है, वो किसी भी मोहताजी से पाक है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और उस रब को पहचान गए ना जिस दिन, तो ये माथा नहीं टेकोगे कहीं और, किसी से खौफ नहीं खाओगे, किसी का डर नहीं फिरोगा उस रब के सिवा, किसी से भी आपको परेशानी नहीं होगी, ये मेरा कोई नुकसान ना कर दे, हाँ ये मुझे कुछ ना कर दे। सुभानहू, पाक है वो, व तआला, और बुलंद है, बहुत बुलंद। अन से मा जो, उससे जो, यकूलून वो कहते हैं, उलूवन कबीरा, बुलंदी वाला है बहुत ज्यादा। ये मुशरिकीन जो अल्लाह ताला के बारे में बात करते ना, कभी औलाद कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि फलां उसका शरीक है, कभी कह रहे हैं कि ये उसका मददगार है, कभी नाउज बिल्ला ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं, हालांकि वो तो इससे बहुत बुलंद है, उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं, लैसा कमिथली शैउन, उस जैसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अल्लाह अकबर, लेकिन इंसान की बातें कह के भी जुबान से फिर ईमान में कमजोरी है ना, कि फिर इधर उधर डगमगा जाता है, इधर उधर घूमता है, इधर उधर फिरता है, फिर क्यों इधर टकरे मारता फिरता है, फिर क्यों कभी अपने आप को खड़ा कर लेता अल्लाह के मुकाबले में। खुद को खुदा बना लेता है अपनी जिंदगी के, खुद खुदा बने में, कहते हैं मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, अपने तो खुद ही खुदा बन बैठे। तो खुदा को तो आपने उसको खुदाई का दर्जा ही नहीं दिया, अब अपने खुद खुदा है, अब अपनी ही मर्जियां अपनी ख्वाहिशात पे जिंदगी गुजारनी है, अपने मनमाने तरीकों पे गुजारनी है। हलाल हराम ने खुद डिफाइन करना है कि मेरी समझ में ये हलाल आता है और ये हराम आता है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है। तो कौन है खुदा फिर? और आज की सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि अक्सरियत बुतों को भी नहीं पूछते, पत्थरों को भी नहीं पूछते, इधर उधर भी नहीं पूछते, अपने आप को पूछते हैं, ख्वाहिश नफ्स जिसको हम कहते हैं। और सबसे बदतरीन माबूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ख्वाहिश नफ्स है। यहां से फिरौन ने नबरून ने खुदाई के दावे किए हुए थे अपने लोगों पे, हम अपने खुद खुदा बने बैठे। तो जिनको भी वो पूछते हैं और जो बातें करते हैं ये अल्लाह ताला के बारे में, उससे वो बुलंद है और बहुत बुलंद है। अब फिरौन नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, फिरौन ने इतने साल का हो गया उसके, वो अब खुदाई का दावा कर रहा है, जिस वक्त वो पैदा नहीं हुआ था तब कौन खुदा था फिर? जबकि अल्लाह ताला अल अव्वल वल आखिर है, जब कोई नहीं था तब वो था और जब कोई नहीं होगा तब भी वो होगा। और जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम कुछ समझते हो, चाहे वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते हैं या किसी इंसान को या किसी नबी को या किसी औलिया अल्लाह को, कितने कमजोर हैं, क्योंकि वो सब मखलूक है। आज बाज मजाहिब में करोड़ों खुदा बनाए हुए जिनको पूछते हैं, पता नहीं कितने खुदा हैं, जो नुकसान पहुंचाए वो भी खुदा बना लेते हैं, जो फायदा दे उसको भी खुदा बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब बातों से बुलंद है, उसके मुकाबले का कोई नहीं। और वो अपनी मखलूक से भी चाहता है कि अपने आप को खुदा ना बनाओ, अपनी मैं को खत्म कर दो, मैं की कोई हैसियत नहीं है उसके यहाँ, आजी झुक जाओ, अबूदियत अब्द बन के रहो, गुलामी करो।